धवला पुस्तक दूसरी लेक्चर नंबर 15। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयरियाणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोहे सौवसाऊणं। सिद्धमणन्तमणीन्द्रिय मणुव मम पत्थसोकमणवज्रम्। केवलपहोहनिज्जीय दुन्नयतिमिरञ्जिनम् नमः। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इस षटखंडागम का जो प्रथम खंड है जीवस्थान, उसमें सत प्ररूपणा चल रही है, और दूसरे पुस्तक के पृष्ठ संख्या 500 निवासी पर हम आए, 589। पंचेंद्रियों की अपनी प्ररूपणा चल रही थी। देखो, आप गति मार्गणा के समय में थे ना तेजस, क्या नहीं थे? मैंने देवों में लगाए, नारकियों में लगाए, तीर्यंचों में, मनुष्यों में लगाए। अभी हमारा क्राइटेरिया क्या है? इंद्रिय मार्गणा। तो हमने एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय में देख लिया है, उसके सूक्ष्म बादर भेद, पर्याप्त अपर्याप्त भेद, उसमें 20-20 प्ररूपणा लगाई हमने। उसमें तो असंगी पंचेंद्रिय तक तो मिथ्या दृष्टि रहते हैं, परंतु जीव समाज जैसे एक इंद्रिय में चार हो गए, सूक्ष्म भी, बादर भी, पर्याप्त भी, अपर्याप्त भी। द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय में दो दो हो गए। फिर अभी पंचेंद्रिय की बात चल रही है, तो पंचेंद्रियों में जीव समास कितने हो गए आप बताएंगे?
पंचेंद्रिय,
हाँ बहुत अच्छा, संगी भी, असंगी भी, पर्याप्त भी, अपर्याप्त भी। और पंचेंद्रियों में गुणस्थान कितने हो गए? सभी 14। तो इस तरह से लगाना था, तो हमने सामान्य से लगा लिया था, यानी 14 गुणस्थान बताया। फिर एक एक गुणस्थान की बात अभी बता रहे हैं। अभी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि, ऐसा हमने आलाप कल देखा था, पंचेंद्रिय और मिथ्या दृष्टि। तो पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि में वही चारों जीव समास हो गए, और गुणस्थान एक लेना है। तो यहाँ जैसे जितने योग है, जितने क्या है, इतने सब है, यानी पर्याप्त अपर्याप्त सब आ गए, केवल आहार द्विक को छोड़कर बाकी सभी योग भी हो गए यहाँ पर। यानी विचार कैसे करना है वो हमने देखना था, क्योंकि पंचेंद्रिय कहने से देव भी आए, नारकी भी आए, तो वैक्रिय को उसको भी लेना है योग में। जब मनुष्यों की या देवों की बात करते थे, अकेले वैक्रिय को या अकेले अवधारिक को लेते थे, यहाँ वैसा नहीं है। हाँ, देखो अभी हम कल हमने पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि के अपर्याप्त के आलाप भी देखे। अपर्याप्त के आलाप यानी क्या है? मरकर अभी मिथ्यात्व के साथ अन्यत्र आया है, इस तरह से अपर्याप्त के अलग। तो हमें मालूम है कहाँ क्या डिफरेंस। योग में तो केवल, योग में क्या लेंगे? हाँ लेंगे, तो कौन कौन से मिश्र लेंगे? हाँ, और कारमान, यानी तीन हो जाएगी। हाँ। लेशा में जब अपर्याप्तों की लेशा देखती है, तो द्रव्य, द्रव्य से,
हाँ,
और तीन शुभ भी होगी। देवों में मिथ्या तो में उत्पन्न होने वाला, अरे नहीं, ग्रेवेज तक उत्पन्न होता है, ख्याल में आई ना बात? यानी द्रव्य से छो लेशा हो जाएगी अपर्याप्त में भी,
भाव से
लेशा छो होगी। द्रव्य से तो दो देखी थी, ये तो हमने कल देखा था, यानी मिथ्यात्व की बात देखी। फिर ऐसे ही एक एक गुणस्थान में घटित करना, ऐसा उन्होंने बता दिया, क्योंकि जो हमने मूल में देखे थे साथ, क्योंकि ऊपर के जो गुणस्थान है तो वो तो पंचेंद्रिय संगी के ही हो गए, यानी जो हमने ओरिजिनली देखा था गुणस्थानों में, जो सासाधन गुणस्थान वाले को लगा लो तो हमने देखा तो जीव समाज कौन से संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त पर्याप्त हो गए, क्योंकि सासाधन के साथ भी मर कर जाता है, चारों गति वाले हो गए। इस तरह से हम वहाँ देखते थे अपर्याप्त अवस्था में हमको नरक को छोड़ना है। जो मूल में हमने देखे थे गुणस्थानों की बात, वही पंचेंद्रियों की अपेक्षा सासाधन से ऊपर लगेगी बात। मूल में जब हमने ओघ में देखा था मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, तो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय सब देखे थे। अब हमारा मार्गणा हमारी पंचेंद्रिय की है, तो पंचेंद्रियों में हमने सोचा था वहां मिथ्या तो गुणस्थान में, तो असंगी असंगी दोनों को लिया। सासाधन से ऊपर लेना है तो अकेले संगी पंचेंद्रिय को लेना है, और जहां अपर्याप्त अवस्था संभव है पंचेंद्रियों में, चौथे में है जो जहां जो अपेक्षा है, पहला है, दूसरा है, चौथा है, छठा है, तेरवा है, वो उसकी बात करेंगे। वहां यह तक समझ में आई बात? तो ये हमने समस्त आलाप जानकर कहना चाहिए, यहां तक हमने कल पढ़ा था, और उसमें से सासाधन आदि की बातें भी लगाकर देखी थी। अब यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं 589 पर, ये जो नया पैराग्राफ है ना, पर्याप्त नाम कर्म के उदय सहित असंगी पंचेंद्रियों में ये अभी आलाप लगा रहे हैं। पंचेंद्रिय इन जनरल कहा था पहले, फिर उसके बाद संगी पंचेंद्रियों पर लगाना था, वो भी जो गुणस्थानों में लगा के दिखाया, अब असंगी पंचेंद्रियों में देखना है। तो क्या हमारी क्राइटेरिया क्या है? पर्याप्त नाम कर्म के उदय सहित असंगी पंचेंद्रिय जीव, यानी पर्याप्त नाम कर्म का उदय है और असंगी है, तो उनमें जीव समास क्या हो गए?
पर्याप्त और असंगी
है। हाँ, पर्याप्त
पर्याप्त ही होगा ना?
नहीं, पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों हो गए, क्योंकि पर्याप्त नाम कर्म वाले निवृत्ति अपर्याप्त भी होते हैं। और गुणस्थान कौन सा होगा?
पहला
बोलो आप।
पहला
असंगी है जी,
असंगी है,
एक ही पहला गुणस्थान होगा। समझ में आती है? अभी आप लगाओ सारे। हाँ,
यहाँ से लगाओ।
हाँ, वहाँ से लगाओ।
एक एक मिक्सर।
हाँ,
जी समाज असंगी पर्याप्त अपर्याप्त।
हाँ,
पर्याप्ति
या अपर्याप्ति? अभी छह के असंगी है,
असंगी है,
मनोपर्याप्ति नहीं होगी। पांच पांच, यानी पांच पांच क्यों? पांच पर्याप्ति, पांच अपर्याप्ति। अभी प्राण, बहुत दिन का गैप हुआ ना बीच में। असंगी के प्राण पर्याप्त के कितने और अपर्याप्त के कितने? असंगी में कौन सा प्राण नहीं होगा पंचेंद्रियों के? पांच इंद्रिय प्राण हो गए कि नहीं हो गए?
पांच इंद्रिय प्राण
हो गए, मन बल नहीं होगा। हाँ, तो कितने रह गए?
नौ।
नौ, हाँ। और अपर्याप्त के?
अपर्याप्त सात।
हाँ, नौ और सात।
संज्ञा?
चारों
संज्ञा।
गति?
गति असंगी पर्याप्त,
चारों है ना? आप क्या कहते सोनी बहन? असंगी पंचेंद्रिय है, कौन से गति में हो गए? हाँ, चारों गति। हाँ, हम कहा ना पढ़ते हैं। हाँ हाँ, उत्पन्न क्या? मरकर उत्पन्न होने की बात नहीं है। असंगी पंचेंद्रिय जीव कौन से गति का जीव है? आप ही ने उत्तर दिया।
नरक में नहीं
है। सारे संगी पंचेंद्रिय, मनुष्य हो, नारकी हो, देव हो।
एक बात ध्यान रखनी है, एक इंद्रिय से लेकर एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर इंद्रिय,
दो
संगी पंचेंद्रिय तक
नियम से
तीर्यंच ही होंगे।
असंगी पंचेंद्रिय कहेंगे तो चार गति। कोई कोई पूछते ना, मनुष्य भी असंगी होते हैं क्या? लब्धि पर्याप्त उनके मन का,
असंगी मर के देव में,
वो मर कर जाते तो वो देव हो गया, उसको देव की पर्याय। कहाँ से आया है उसके लिए हम कहेंगे असंगी से आया है, पर जब मरकर मरा, अब कह रहे हैं ना मरकर, तो मरा तो उसकी पर्याय बदल गई। ख्याल में आती बात? उसको हम असंगी नहीं कहेंगे, असंगी से उत्पन्न हुआ भले कहाँ, वो भवनवासी और व्यंतर में हो सकता है, परंतु उसको अभी हम भवनवासी या व्यंतर देव कहेंगे, उसको असंगी नहीं कहेंगे। वो संगी पंचेंद्रिय हो गया। हाँ, असंगी सारे जो असंगी है, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय असंगी तक, सारे तिर्यंच गति के ही जीव है। यानी तिर्यंच गति में ऑप्शन बहुत है, एक इंद्रिय भी है, दो इंद्रिय भी है ना, वैरायटी बहुत है। हाँ, अभी आगे कहाँ तक हमने गति तक देखा था? इंद्रिय पंचेंद्रिय काय में त्रस्काय, अभी योग आपको बताना है। हाँ, प्रश्न क्या है? हाँ, मनुष्य कहाँ होता है असंगी पंचेंद्रिय? मनुष्य सारे संगी पंचेंद्रिय ही है, मनुष्य भव जो है संगी पंचेंद्रिय का है। अपर्याप्त हुआ तो क्या हुआ? संग जो लब्धि अपर्याप्त है वे भी संगी पंचेंद्रिय मनुष्य भव के जीव है। तो तीर्यंच गति ही है। हाँ चलो, अच्छा हुआ लगाने को बोला, नहीं तो हम पढ़ जाते तो आपको। हाँ हाँ,
योग में,
हाँ योग योग सामान्य लिया ना, पर्याप्त भी लेना है, अपर्याप्त भी लेना तो बता दो। पर्याप्त
योग होगा,
आप बता दो। असंगी है तो मनोयोग होगा कि नहीं होगा?
नहीं होगा।
हाँ,
तो चार वचन योग,
असंगी को चारों वचन योग होते हैं क्या? वो असंगी आप जैसी भाषा भी बोलेंगे, ट्रेन भी हो गए, जिन एनिमल्स को ट्रेन कर सकते हैं ना, ये जो या नाम लेके बुलाते वो संगी है। ये हमें जो दिख रहे हैं ना, कुत्ता है, बिल्ली है, वो पालतू आदमी है, ये जो ट्रेन करते हैं सर्कस में, हम देखते हैं उनके शो होते हैं ना, एनिमल शो, वो सारे कैसे संगी है, उनको सिखा सकते हम, सीख जाते हो, पहचान भी लेते आदमी को, है ना। तो वो सारे मन वाले हैं, और ये कैसे बिना मन, उनको तो मन का तो है ही नहीं है, वचन भी उनके तो कोई ऐसे नहीं, कोई संकेतात्मक भाषा होगी उनकी, परंतु उनके ऐसे कोई शब्दों से ऐसा कुछ है नहीं, और विचार करने की कोई ये भी नहीं है। एक अनुभय वचन योग है, द्विंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक अनुभय वचन योग, न सत्य न असत्य ऐसा वाला। अब ये तो एक वचन योग हुआ, फिर
औदारिक और औदारिक मिश्र।
हाँ, औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग, कर्म, बहुत अच्छा, चार हो गए ना। अब असंगी पंचेंद्रिय में कौन कौन से वेद वाले जीव हो गए? नपुंसक वे, और पंचेंद्रिय जीव है तो स्त्री वेद पुरुष वेद यहाँ से चालू होते हैं, संगी को भी और असंगी, तीनों वेद होते हैं। देखो, करोड़ पूर्व की आयु वाले भी इनमें होते हैं, असंगी पंचेंद्रियों में मैक्सिमम आयु करोड़ पूर्व की है। कर्म भूमि में होते, भूभूमि में कोई असंगी नहीं होते। हाँ, तो वे तीनों कषाय
चारों।
अब ज्ञान कौन सा होगा? ज्ञान क्यों दो होगा? अपर्याप्त नहीं, दोनों है, पर्याप्त अपर्याप्त दोनों है, दोनों है। तो विभंग ज्ञान होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि मन के बिना नहीं होगा ना। जिनके मन है उसके वो अवधि ज्ञान को, अवधि ध्यान जो कुछ है वो हो सकता है, ये बिना मन वाले को तो नहीं हो सकता। मति श्रुत है, वो कौन सा है? मिथ्या तो गुणस्थान है, तो कुमति कुश्रुत, असंयम, दर्शन, हाँ चक्षु अचक्षु दोनों, लेश आपको बताना है। द्रव्य की कौन कौन सी लेशा होगी? अरे पर्याप्त अपर्याप्त दोनों है, अभी छो लेशा होगी। हम देख रहे एनिमल्स अलग अलग कलर के, ये सारे उसमें सब आ जाएंगे। हाँ, तो द्रव्य से छो हो जाएगी, भाव से तीन अशुभ होती है। हाँ, हमने वहां लिखा था शुभ, परंतु महाबंधन में भी उसको स्वीकार नहीं है, केवल जीव कांड में एक जगह उसकी बात आती है, उन गाथा में लिखा है, गाथा 530 गोमट सार की, उसमें ऐसा लिखा था असंगी को भी पीत लेशा हो सकती है और मरकर भौमत्रिक में भी जाता है। पर वैसे मरने वाली लेशा भी ऐसे चार वहां स्वीकार किया है, अन्यत्र कहीं नहीं। तीन अशुभ यहाँ भी लिखे, तीन अशुभ, और महाबंध में पुस्तक में भी तीन अशुभ ही है, वहाँ पीत लेशा का स्वीकार नहीं था।
हमने लास्ट टाइम ये लिखा था, पर्याप्त असंगी पंचेंद्रिय में कृष्णादि चार भाव लेशा होती है, गोमट सार जीवकांड पेज 607 गाथा 530।
वही तो मैं बताया अभी, वही उसी की बात की
हम इसमें क्या लिखे, तीन लिखे के चार?
नहीं, तीन ही लिखना चाहिए।
हा?
तीन लिखना चाहिए
इसमें, चार
वो क्योंकि वो तो जीव कांड का ही है। ये जो टेबल बन आप चेक कर रहे हैं वो जीव कांड के ही है, तो उसमें तो चार रखना हम, क्योंकि मूल गाथा में उन्होंने स्वीकार किया है और यहाँ पर भी हमने लिख के रखा है नीचे पुस्तक में गोमर सार की 530 नंबर की गाथा में पीतलेशा का स्वीकार है अभी जो यथायोग्य है, परंतु खमंडलिति अशुभ वहां असंगीतक स्वीकार किए हुए। हाँ,
तो पीछे मनुष्य जो मध्यादृष्टि मनुष्य पौनत्रिक पे उत्पन्न होने को जा रहे हैं, उनके मरण के समय कौन सी लेशिया होगी?
अशुभ लेशिया होती है ना,
हमने हम पीत देखते थे अभी तक,
पीत पीत होगी तो भी वो तो अशुभ, एक समय में अशुभ हो जाएगी।
मनुष्य भी मरण के समय जो भौनत्रिक पे उत्पन्न होने
नहीं, वो तो है भौनत्रिक में जाने वाले की अशुभ लेशा होकर वहाँ जाला जाता है मरण के समय, ऐसा आता है। क्योंकि ये भी बात आई थी कि भौनत्रिक में उत्पन्न होने वाले के मरण के समय अशुभ लेशा हो जाती है, ऐसा भी आता है। जैसे हम कहते उद्वीपायन वगैरह की जो स्टोरी आती है ना, जैसे क्रोध आया वो अशुभ तेजस निकला, तो उनकी भी अशुभ लेशा हो गई ना वहाँ पर, और वो भवनवासी में उत्पन्न हुए। देखो आगे पढ़ेंगे जो कुछ, तीन अशुभ यहाँ लिखना और हमने एक शुभ वहां लिख के वो रहे ना, तो उसके लिए नीचे रेफरेंस बताए ना, क्वेरी करके उसके लिए रेफरेंस क्या है वो भी हमने लिख के रखा है। वो शुभ क्यों डाला, क्योंकि वो जीव कांड में उसका रेफरेंस है, अन्यत्र ये रेफरेंस नहीं मिल रहा है। अभी ये भव्य है कि अभव्य है? दोनों है। सम्यक तो कौन सा मिथ्यात्व? हाँ, असंगी है। ये दो असंगी क्यों लिखा? सामान्य 207 नंबर का टेबल, 2 असम, 2 कैसा ले, 1 असम चाहिए ना। वही तो, 2 जो आंकड़ा है उसके बदले 1 आंकड़ा चाहिए। हाँ, उसमें क्या है, उसमें बराबर, पुस्तक में गलत है, 1 असंगी चाहिए, 1 असंगी, असंगी तो लिखा है परंतु 2 लिखा है, 2 के बदले 1 करना, वो लास्ट टाइम करना रह गया अपना। आहारक या अनाहारक
दोनों
और उपयोगी, अभी हम इसको पढ़ेंगे। देखो पर्याप्त नाम कर्म के उदय सहित असंगी पंचेंद्रिय जीवों के सामान्य आलाप कहने का, सामान्य कहने से पर्याप्त अपर्याप्त दोनों आ गए। एक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान, असंगी पर्याप्त और असंगी अपर्याप्त, ये 2 जीव समास, 5 पर्याप्तिया 5 अपर्याप्तिया, 9 प्राण 7 प्राण, चारों संज्ञाएं, तीर्यंच गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय। अब योग में देखना है, वचन का एक ही है अनुभय वचन योग, औदारिक का योग, ये तो पर्याप्त उनके हो गए, औदारिक मिश्र का योग और कारमण का योग, यह अपर्याप्त उनके, सबको मिलकर यहाँ पर बताना है, इसलिए 4 होते हैं। तीनों वेद यानी जो स्त्री और पुरुष वेद, ये पंचेंद्रियों के ही होता है, चतुरेंद्रिय तक तो नहीं था, इनमें भी तीनों वेद वाले हो गए, संगी में भी तीनों वेद वाले हो गए। 4 कषाय, 2 अज्ञान, असंयम, चक्षुर अचक्षु 2 दर्शन, द्रव्य से 6 लेशाएं, भाव से कृष्ण नील और कापोत लेशा। अभी हम पुस्तक की बात पढ़ रहे हैं, भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक, मिथ्यात्व, असंगिक, आहारक अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अभी इसमें से पर्याप्त काल संबंधी आलाप देखना है, उन्हीं असंगी पंचेंद्रिय जीवों के पर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर एक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान, अभी एक असंगी पर्याप्त जीव समास, पांच पर्याप्तियां, नौ प्राण, चारों संगाए तिर्यंच गति। ये योग कौन से हो गए यहाँ पर?
औदारिक,
औदारिक का योग।
हाँ,
तो देखो तिर्यंच गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रसकाय, अनुभय वचन योग और औदारिक का योग, दो योग, तीनों वेद, चारों कषाय, कुमति और कुशरुत, दो अज्ञान, असंयम, चक्षुर अचक्षु, दो दर्शन, द्रव्य से छोलेशाएं, भाव से कृष्ण नील और कापोतलेशाएं। ऊपर भी लिखे भावे न किन्न नील काउलेशाओ। अब यहाँ पीतलेशा को स्वीकार नहीं था उनको। भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक, यानी पीतलेशा जीव कांड की अपेक्षा से है, परंतु हमने यहाँ तो उसको स्वीकार नहीं है, क्योंकि मूल प्राकृत में भी उन्होंने तीन नाम लेकर तीन लिख लिया है। यह हमने पीत लिख के रखा था, अपन ब्रैकेट में जीव कांड ऐसा लिख सकते हैं। भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक, मिथ्यात्व, असंगिक, आहारक, पर्याप्त है ना, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। उन्हीं असंगी पंचेंद्रिय जीवों के अपर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, असंगी अपर्याप्त जीव समास, पांच अपर्याप्तियां, सात प्राण, चारों संज्ञाएं, तिर्यंच गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, योग कौन से हो गए सोनी बेन? अभी
अपर्याप्त,
औदारिक मिश्र, बहुत अच्छा, औदारिक मिश्र और कारमान, औदारिक मिश्र का योग और कारमान का योग, दो योग, तीनों वेद, चारों कषाय, कुमति और कुशरुत, ये दो अज्ञान, असंयम, चक्षु और अचक्षु, दो दर्शन। अब द्रव्य से जो हम अपर्याप्त में कहते हैं कापोत और शुक्लेशा है, भाव से तो तीन अशुभ ही होती है, भव्य सिद्धि भी है अभव्य सिद्धि भी है, मिथ्यात्व, असंगिक, आहारक अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अब जिनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, जिसको हम लब्धि अपर्याप्त कहेंगे, तो उनका जो असंगी का, असंगी पंचेंद्रिय का जो अपर्याप्त आलाप है, वही उनके लिए होगा। उनके अपर्याप्त ही नाम कर्म है, तो उसमें एक ही होगा अपर्याप्त वाला भी, उनमें पर्याप्त अपर्याप्त नहीं होता। पर्याप्त नाम कर्म वालों के पर्याप्त अपर्याप्त दोनों ही होते हैं। जिनके अपर्याप्त ही नाम कर्म का उदय है, लब्धि अपर्याप्त कहते हैं उनको, वो अपर्याप्त वाला एक ही आलाप है, जो अभी हमने पढ़ा वैसे ही वहां पर होगा। 591 पर पढ़ेंगे, देखो, अपर्याप्त नाम कर्म के उदय वाले पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त जीवों के आलाप कहने पर एक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। अच्छा, ये सब पंचेंद्रिय एक साथ लिए, अपर्याप्त नाम कर्म वाले पंचेंद्रिय लिए, यहाँ वो असंगी को अलग नहीं लिया, तो उसमें दोनों अपर्याप्त हो गए, संगी भी अपर्याप्त और असंगी भी अपर्याप्त, इसलिए दो लिए। नहीं, ये बात अलग है, ये तो लब्धि अपर्याप्त की बात है ना, पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त, पंचेंद्रिय में दो दो बातें की, संगी असंगी के भेद किए थे और उसमें चारों जीव समास लिए थे, पर्याप्त भी अपर्याप्त भी। अब ये पंचेंद्रियों का लब्धि अपर्याप्त वाला भेद बता रहे हैं। जैसे हमने एकेंद्रिय के भी भेद देखे थे, एकेंद्रिय में जनरल बात की थी, फिर सूक्ष्म बादर की बात की थी, फिर सूक्ष्म बादर में पर्याप्त नाम कर्म वाले लिए थे और उन्हीं में अलब्धि अपर्याप्त वाले जीव भी लिए थे, वैसा अभी यहाँ पर लेना है। पंचेंद्रियों में लब्धि अपर्याप्त, वो संगी भी होते हैं असंगी भी होते हैं, इसलिए दोनों को लिया, तो जीव समास में संगी अपर्याप्त और असंगी अपर्याप्त दो लेना। देखो, एक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान, संगी अपर्याप्त और असंगी अपर्याप्त, असंगी अपर्याप्त कहने से असंगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त, ये दो जीव समास, छह अपर्याप्ति और पांच अपर्याप्तियां, सात प्राण और सात प्राण, क्योंकि संगी के भी अपर्याप्त के सात प्राण, असंगी के भी उतने ही, चारों संज्ञाएं, मनुष्य गति और तिर्यंच गति दो गति। अभी दो गतियां क्यों ली?
संगी है,
संगी है तो, संगी है तो सोनी बेन देव और नारकी को क्यों छोड़ा है? वो भी संगी पंचेंद्रिय है, बहुत अच्छा, ये लब्धि अपर्याप्त है। देव नारकी में कोई लब्धि अपर्याप्त, हाँ हाँ बराबर है उत्तर, इसलिए यहाँ लब्धि अपर्याप्त को मैं मनुष्य तिर्यंच दोनों को लिया। आगे देखते हैं, पंचेंद्रिय जाति त्रसकाएं, औदारिक मिश्र का योग और कारमान का योग, दो वेद, नपुसक वेद एक ही लिया, भले वो पंचेंद्रिय जीव है, जो लब्धि अपर्याप्त है, अपर्याप्त नाम कर्म वाले, उनके एक नपुसक वेद ही होता है। जो हम पर्याप्त नाम कर्म वाले, जो हम अपर्याप्त जीव देखे थे निवृत्ति अपर्याप्त वाले, उनमें तो तीनों वेद लिए थे, और ये कैसा है? लब्धि अपर्याप्त ही है, यानी वो तो एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होगी और मर जाने वाला है, और ये नपुसक वेदी ही होते हैं, क्योंकि वो वातावरण में से सम्मूर्छन की उत्पत्ति होती है इनकी, लब्धि अपर्याप्त को
नियम से सम्मूर्छन ही रहते हैं।
हाँ, लब्धि अपर्याप्त जीव नियम से सम्मूर्छन होते हैं, और वो निवृत्ति अपर्याप्त जीव वो तो गर्भज हो गए, उनमें भी सम्मूर्छन होते हैं, क्योंकि वो सम्मूर्छन भी बड़े लाइफ के हो सकते हैं, तीर्यंच के, यानी तीर्यंच जो पर्याप्त नाम कर्म वाले हैं,
मनुष्य भी सम्मूर्छन जीव,
पर वो लब्धि अपर्याप्त होते हैं, मनुष्य सम्मूर्छन लब्धि अपर्याप्त ही होते हैं, और गर्भज जो है गर्भ में आने वाला बालक, वो भले एक घंटे के अंदर क्या, एक पांच मिनट के अंदर भी गर्भ हुआ और मर गया, तो भी वो पर्याप्त जीव है, पर्याप्त नाम कर्म के उदय वाला है, उसमें तो तीनों वेद कोई भी हो सकता
है।
अंतर्मूर्त में वो छोटा है, बहुत छोटा अंतर्मूर्त है, मर जाता है, क्योंकि उसकी पर्याप्तियां नहीं पूरी होती ना, एक भी नहीं होती, छह की बात नहीं, एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होती, शुरू तो सब हुई थी,
ये मर के लंबी आयु में उत्पन्न
हो सकते हैं, पर लंबी आयु कौन? मनुष्य तिर्यंचों की, देवनारकी में नहीं जाएंगे ना भोगभूमि में जाएंगे,
कर्मभूमि
का मनुष्य तिर्यंच हो सकता है, करोड़ पूर्व की भी आयु हो सकती है उनकी, हाँ हो सकती है, कितने यानी वहां पर भी ऐसे परिणाम होगी कि इतनी बड़ी लंबी आयु बंधी उसकी। देखो नपुसक वेद तक आए थे ना, चारों कषाय, कुमति और कुश्रुत, ये दो अज्ञान और संयम, चक्षु और अचक्षु, ये दो दर्शन। आप कहेंगे पर्याप्ति भी असंयम है, चक्षु अचक्षु दो दर्शन बताए ना, तो वहां तो पर्याप्ति भी नहीं, वो तो दर्शन दोनों कैसे कहते हैं? तो दर्शनावरण का जो वहां पर शोषण चलता है, तो वहां तो शक्ति अपेक्षा वो दर्शन स्वीकार है, वहां पर अपर्याप्त काल में भी स्वीकार है, जैसे हम ज्ञान दर्शन दोनों को स्वीकार करें, उससे रहित तो कोई जीव होता ही नहीं है। लेशा में द्रव्य से दो अपर्याप्त है ना, और भाव से तीन अशुभ, भव्य भी है इनमें अभव्य भी है, एक मिथ्यात्व सम्यक्त्व के माने कॉलम में एक मिथ्यात्व लिखना, संगी है क्या तो संगी भी और असंगी भी, इसलिए वहां दो लिखे हैं। ऊपर क्या हम पढ़ रहे थे, देखो चक्षुर अचक्षु दो दर्शन, द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेशाएं, 592 प्राणा, भाव से कृष्ण नील और कापोत लेशाएं, भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक, मिथ्यात्व, यहाँ खाली संगीक लिखा है, संगी पंचेंद्रिय नहीं है, अच्छा अच्छा सॉरी, मैं ऊपर के नीचे आई क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने पैराग्राफ गलत पढ़ा,
नीचे का ही टेबल
है, नहीं 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 टेबल नीचे है, और पढ़ना मैं ऊपर के पढ़ते नपुसक वेद का पढ़ते पढ़ते मैं नीचे के उधर नपुसक वेद का पढ़ने लगी, मैंने भूल कर दी, पेज पलटना नहीं था, 591 पर भी बात चल रही थी। फिर भी ये जहाँ से हमने वेद की बात पढ़ी थी ना, नपुंसक वेद ऊपर के पैराग्राफ में नीचे से तीसरी चौथी लाइन, चारों कषाय कुमति कुशल दो अज्ञान असंयम चक्षु चक्षु दो दर्शन, द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेशाए, भाव से कृष्ण नील कापोत लेशाए, भव्य सिद्धि का भव्य, ये बाकी तो ऐसा ही लगेगा, मिथ्यात्व संगिक और असंगिक दोनों है, आहारक अनाहारक, क्योंकि ये भी लब्धि अपर्याप्त भले है परंतु अवदारिक मिश्र में तो परमाणु तो ग्रहण कर रहे शरीर के, पर्याप्ति पूरी नहीं होने वाली है, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं।
तो पर्याप्त तो अभी तक तो वो एक भी पर्याप्त स्टार्ट भी नहीं हुई
थी, ना स्टार्ट छह की हो गई, छह हो या पांच हो, सात तो हो गई, इसलिए पांच अपर्याप्तिया छह अपर्याप्तिया कहा, नहीं तो एक ही स्टार्ट होती तो एक ही कहते ना। उसकी पूर्णता एक के बाद एक होती है, जो छह पर्याप्त रेगुलर पर्याप्त जीवों की पूर्णता सभी की सभी स्टार्ट हुई, अभी पंचेंद्रिय लब्धि पर्याप्त तो उसके सब पर्याप्ति चालू हो गई, पूर्णता एक की भी नहीं हुई। अब ये अपर्याप्त नाम कर्म वाले पंचेंद्रिय लिए थे ना, अब उसमें से संगी पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त लिए, अभी इसको असंगी को निकाल दिया, तो संगी पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त नाम कर्म के उदय वाले संगी पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त जीवों के आलाप करने पर, ये तो संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त नाम कर्म के ऊपर क्या है, सन्नी पंचेंद्रिय लब्धि अपजत्तानम, सन्नी पंचेंद्रिय लब्धि अपजत्त नाम कम्मो दयानम भन्नमाने अथियम गुणठानम, ठीक है ऊपर ही उन्होंने लिखा है उसका ट्रांसलेशन ऐसा कर दिया। हम हमेशा अपर्याप्त नाम कर्म वाले कहते, यहाँ लब्धि अपर्याप्त नाम कर्म वाले बताए, अभी पढ़ेंगे हम एक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान, उन्होंने संगी तो बता दिया है इसलिए संगी अपर्याप्त जीव समास एक ही लेना, इसका टेबल नेक्स्ट पेज पर होगा। छहो अपर्याप्तिया सात प्राण, ये लिखा ना छहो अपर्याप्ति, सभी शुरू हुई थी एक भी पूर्ण नहीं होने वाली, सात प्राण चारों संज्ञाएं, मनुष्य गति और तिर्यंज गति ये दो गतियां, पंचेंद्रिय जाति त्रस का है, औदारिक मिश्र का योग और कारमान का योग ये दो योग, नपुसक वेद चारों कषाय, कुमति कुश्रुति ये दो अज्ञान, असंयम चक्षु और अचक्षु ये दो दर्शन, द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेशाएं, भाव से कृष्ण नील कापोत लेशाएं, भव्य सिद्धि का भव्य सिद्धि, मिथ्यात्व संगिक, अभी ये केवल संगी को लिया है, संगी अपर्याप्त को इसलिए संगी को लिया, आहारक अनाहारक साकार उपयोगी अनाकार उपयोगी होते हैं। अब यहाँ अकेले असंगी को ले रहे हैं, अपर्याप्त नाम कर्म के उदय वाले असंगी पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त जीवों के आलाप कहने पर, अभी अपर्याप्त ही है ना, तभी तो आसान है, अभी इसमें गति में क्या लिखेंगे, अभी संगी पंचेंद्रिय का अपर्याप्त का आलाप था तो उसमें तीरंज मनुष्य दोनों गति लिए और यहाँ तीरंज गति, इतना तो डिफरेंस होगा यहाँ पर है ना। एक मिथ्या दृष्टिकोण स्थान, एक असंगी अपर्याप्त जीव समास, पांच अपर्याप्तियां, सात प्राण, चारों संज्ञाएं, तिर्यंच गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, औदारिक मिश्र का योग और कारमान का योग दो योग, नपुसक वेद चारों कषाय, कुमति और कुश्रुत दो अज्ञान, असंयम, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है, केवल हमको जीव समास को देखना है, गति को देखना है, हा? योग भी वैसे ही हो गए, केवल वो संगी के असंगी उसमें डिफरेंस होगा। द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेशाएं, भाव से कृष्ण नील और कापोत लेशाएं, भव्य सिद्धि अभव्य सिद्धि, मिथ्यात्व असंगिक, आहारक अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अनिंद्रिय जीवों के आलाप, क्योंकि वो इंद्रिय मार्गणा में अनिंद्रिय भी कहा था हमने, सिद्धों के आलापों के समान समझना चाहिए। इस प्रकार इंद्रिय मार्गणा समाप्त हुई। अभी तक हमने गति मार्गणा और इंद्रिय मार्गणा देखी। अरे हरेक मार्गणा के जो भेद है उनमें ये सभी के सभी 20 प्ररूपणा लगाएंगे। यही इस पुस्तक का पूरा टोटल विषय यही है। अब आगे बढ़ते थे काय मार्गणा के अनुवाद से उघालाप कहने पर। आपको मालूम है काय मार्गणा के कितने भेद हैं? तेजल आपको मालूम है काय मार्गणा की अपेक्षा संसारी जीवों के भेद बताना। संसारी जीवों के सिद्ध तो अकायिक होते हैं। छह भेद होते हैं, उसमें 5 स्थावर तो हम अपने इजी आसान करने के लिए हम 2 भेद करते हैं। ऐसा नहीं करना। काय जब कहेंगे तो पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और तरस का एक, ये 6 भेद हुए इस तरह से। अब इसमें एक एक काय पर लगाएंगे अलग अलग। काय मार्गणा है ना, तो हर एक काय वाले फिर उसमें पर्याप्त होते उसमें अपर्याप्त होते वो बात करेंगे। पृथ्वी का एक के कौन कौन सी होगी? पृथ्वी का एक के जीव समाज पृथ्वी का बादर, पृथ्वी का एक पर्याप्त बादर, पृथ्वी का एक अपर्याप्त बादर, सूक्ष्म पृथ्वी का एक पर्याप्त। तो कायिकों में भी एक एक के 4 भेद हो गए। और त्रस कायिक में 2 हो गए ना, बादर पर्याप्त अपर्याप्त। देखो अभी हम पढ़ेंगे मूल में क्या भेद करना है वो तो मालूम होना चाहिए ना। तो काय मार्गणा के अनुवाद से ओ घालाप कहने पर, यानी सभी जो कायिक जीव है कोई भी काय हो तो वो भेद किए बिना अगर हम कहेंगे काय वाले जीव है तो उसमें गुणस्थान कौन से हो गए? 14 हो गए ना। ये कह रहे हैं काय मार्गणा के अनुवाद से ओघालाप कहने पर, यानी काय मार्गणा में कौन कौन से गुणस्थान हो गए? तो 14 गुणस्थान होते हैं। अभी उसमें कितने कितने उसमें जीव समास हो गए तो बता रहे। तो कहते 2 हो गए अथवा 3 हो गए, 4 हो गया अथवा 6 हो गए, 6 हो गया अथवा 9 हो गए। देखो देखो क्या क्या अभी वो सब नीचे बता रहे, यानी ऑप्शनल में लिया 2 या 3, 4 या 6, 6 या 9। देखो उसमें हमने नंबरिंग किए थे। पहला भेद क्या है? 2 या 3, 2 अथवा 3। दूसरा भेद बताया था 4 अथवा 6। आपने लिखा है कि उसमें नंबरिंग किया है? नहीं किया। हमने किया है? आपने किया है नंबरिंग? नंबर डाले है क्या? हाँ, 4 अथवा 6, 6 अथवा 9, ये तीसरा भेद हुआ। चौथा है 8 अथवा 12, पांचवा है 10 अथवा 15, छठा भेद है 12 अथवा 18। देखो ये पर्याप्त के पर्याप्त और निवृत्ति अपर्याप्त, ऐसे 2 भेद करने पर अपर्याप्त के तो 2 एक एक वैसा एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो 1.5 गुना हो जाता है। देखो 2 या 3, 4 या 6, 6 या 9, 8 या 12, 10 या 15, 12 या 18। सातवां भेद क्या है? 14 अथवा 21, 16 अथवा 24, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24। नौवां भेद है 18 अथवा 27, दसवां भेद है 20 अथवा 30, ग्यारहवां 22 अथवा 33, बारहवां है 24 अथवा 36, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36, तेरहवां है 26 अथवा 39, 13 × 2 = 26, 33 = 39, चौदहवां भेद है 28 अथवा 42, पंद्रहवां भेद है 30 अथवा 45, सोलहवां भेद है 32 अथवा 48, सत्रहवां भेद है 34 अथवा 51, 18वां भेद है 36 अथवा 54, और 19वां है 38 अथवा 57 जीव समास होते हैं। नहीं आए ना, वो तो बताएंगे। तो क्या है इतनी इतनी तो उत्सुकता जगी। हाँ देखो, आगे इन्हीं का स्पष्टीकरण करते हैं। देखो, दो जीव समास होते ऐसा कहने पर, यह तो काय वाले जीव है तो उसमें पर्याप्त और अपर्याप्त भेद किए तो दो हो गए। देखो, पर्याप्तक और अपर्याप्तक के भेद से सभी जीव दो प्रकार के होते हैं, अतएव दो जीव समास कहे जाते हैं। तीन जीव समास होते ऐसा कहने पर निवृत्ति पर्याप्तक और निवृत्ति अपर्याप्तक और लब्धि पर्याप्तक लब्धि अपर्याप्तक, इस प्रकार तीन जीव समास होते हैं। मैंने पर्याप्त नाम कर्म वालों में दो, निवृत्ति पर्याप्त और निवृत्ति अपर्याप्त। देखो कैसा लिखा है, निवृत्ति पर्याप्तक, और बाद में कैसा लिखा है निवृत्त्य। निवृत्त्य का अर्थ निवृत्ति, अ तो ती और अ मिलकर त्य हुआ, निवृत्ति अपर्याप्त।
निवृत्ति अपर्याप्त वो अपर्याप्त ही हुआ ना,
दूसरी पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले वाला,
तो पर्याप्त नहीं।
वो तो पर्याप्त हो गया,
पर्याप्त हो गया।
हाँ, सामान्य से जिसको हम पर्याप्त जीव कहते हैं
वही,
उसमें पर्याप्त काल और अपर्याप्त काल ऐसे दो भेद करें, उसके निवृत्ति पर्याप्त, निवृत्ति अपर्याप्त, ये तीन हो गए ना, दो या तीन का अर्थ सम। दोनों को और लब्धि अपर्याप्त है, उसके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय वाला है। अब ये तो दो और तीन समझ में आए ना, अब चार अथवा छह। देखो, चार का भी अर्थ समझ में आ सके ऐसे आपको ख्याल में आएगा, मूल दो भेद करके उसके और दो करना है, त्रस्थावर करेंगे और उसके पर्याप्त। देखो, चार जीव समास होते ऐसा कहने पर त्रस्थायिक जीव दो प्रकार के होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त, और स्थावर का एक जीव दो प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्त, इस प्रकार चार जीव समास कहे जाते हैं। यहाँ तक बात ख्याल में आई। छह जीव समास होते ऐसा कहने पर त्रस और स्थावर के दो, निवृत्ति पर्याप्तक जीव समास दो, निवृत्ति अपर्याप्त जीव समास और दो, लब्धि अपर्याप्त जीव समास, इस प्रकार छह जीव समास कहे जाते हैं। वो जो मूल में देखो त्रस्थावर मूल दो भेद किए थे, उसी में पर्याप्त निवृत्ति पर्याप्त और लब्धि पर्याप्त, ऐसे तीन तीन करके त्रस और स्थावर के प्रत्येक के तीन तीन छह हो गए। अथवा स्थावर का एक जीव दो प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक, त्रस का एक जीव दो प्रकार के होते हैं, त्रस में अलग से भेद किए उन्होंने, सकल इंद्रिय और विकल इंद्रिय। सकल इंद्रिय ने सभी इंद्रिय जो सकल इंद्रिय जीव दो प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक, विकल इंद्रिय जीव दो प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक, इस प्रकार छह जीव समास कहे जाते हैं। ये तो अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग भेद कर सकते हैं। अब अलग से अगर त्रसों में भेद करना है तो एकेंद्रिय, विकल इंद्रिय और सकल इंद्रिय, नहीं त्रस के नहीं, वो हाँ काय के, क्योंकि त्रस और स्थावर कहने पर स्थावर सारे एकेंद्रिय हुए और त्रस में सकल इंद्रिय विकल इंद्रिय दो भेद किए थे। अब सब कायकों के एकेंद्रिय, विकल इंद्रिय और सकल इंद्रिय, तीन निवृत्ति पर्याप्त जीव समास, तीन निवृत्ति अपर्याप्त जीव समास और तीन लब्धि अपर्याप्त जीव समास, इस प्रकार नौ जीव समास होते हैं। स्थावर कायिक जीव दो प्रकार के होते हैं, यानी पहले छह और नौ के दो प्रकार से उन्होंने भेद बताए। स्थावर कायिक जीव दो प्रकार के हैं, बादर और सूक्ष्म। बादर जीव दो प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। सूक्ष्म जीव दो प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। यानी स्थावर के चार भेद किए ना उन्होंने, और त्रस कायिक जीव दो प्रकार के हैं, सकलेंद्रिय और विकलेंद्रिय। सकलेंद्रिय जीव दो प्रकार के हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। विकलेंद्रिय जीव दो प्रकार के हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। इस प्रकार आठ जीव समास होते हैं। समझ में आई बात? ये अलग अलग पद्धति से विभाजन कर रहे हैं। बादर स्थावर का एक, सूक्ष्म स्थावर का एक, सकलेंद्रिय और विकलेंद्रिय जीवों के चार निवृत्ति पर्याप्त जीव समास, चार निवृत्ति अपर्याप्त जीव समास और चार लब्ध्य पर्याप्त जीव समास, इस प्रकार 12 जीव समास होते हैं। ये 8 और 12 के उन्होंने भेद करके बताया। स्थावर कायिक जीव, स्था में एक का मात्रा 100 हो गई। स्थावर कायिक जीव दो प्रकार के होते हैं, बादर और सूक्ष्म। बादर जीव दो प्रकार के होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। सूक्ष्म कायिक जीव दो प्रकार के होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। यानी वो स्थावर के चार भेद उन्होंने ये कर दिए। त्रस्कायिक जीव दो प्रकार के होते हैं, पंचेंद्रिय और अपंचेंद्रिय यानी विकलेंद्रिय। पंचेंद्रिय जीव दो प्रकार के होते हैं, संगी और असंगी। इसमें पंचेंद्रियों के भी दो भेद कर दिए। पहले तो सकलेंद्रिय विकलेंद्रिय किया ही था, अभी उसमें संगी असंगी किया। संगिक जीव दो प्रकार के होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। असंगिक जीव दो प्रकार के होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। और अपंचेंद्रिय जीव यानी जो विकलेंद्रिय हमने कहा, वे दो प्रकार के हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। इस प्रकार 10 जीव समास होते हैं। अब ये 10 के और 15 भी बताएंगे। बादर स्थावर का एक, सूक्ष्म स्थावर का एक, संगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और विकलेंद्रिय जीवों के 5 अलग अलग भेद दिए। 5 निवृत्ति पर्याप्त जीव समास, 5 निवृत्ति अपर्याप्त जीव समास और 5 लब्धि अपर्याप्त जीव समास, इस प्रकार 15 जीव समास होते हैं। जो 10 भेद किए उसके बदले 15 किए। पृथ्वी का एक जीव दो प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्त। अपकायिक जीव दो प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। तेजस्कायिक जीव दो प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्त। आपने समझा होगा वहां पहले मूल 5 भेद किए, फिर उसके पर्याप्त अपर्याप्त 10 भेद किए, उसी के निवृत्ति पर्याप्त, निवृत्ति अपर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त, पार्श्विक 15 किए। अब यहाँ 6 भेद करने जा रहे हैं और पृथ्वी कायिक का नाम ले लिया उन्होंने, तो हमें समझना चाहिए कि मूल में 6 भेद कौन से किए। बोलो, पांच स्थावर कायिक अलग अलग और एक त्रस्त कायिक। पृथ्वी कायिक का नाम लिया ना उन्होंने, पृथ्वी का अकेला पृथ्वी कायिक लिया यहाँ पर। हाँ, तो 6 भेद किए, फिर 6 × 2 = 12 और 6 × 3 = 18 ऐसा करेंगे। तो ये 10, 11 करने हैं उनको। 10 भेद हुए हैं, अभी 11 भेद करेंगे। देखो, नहीं 11 नहीं,
12 हो जाए,
12 नहीं 10 और 15 हुआ ना, अभी 12 और 18 करेंगे। तो पृथ्वी के दो भेद पर्याप्त पर्याप्त, अप का एक दो पर्याप्त पर्याप्त, तेजस का एक दो पर्याप्त पर्याप्त, वायु का एक जीव दो प्रकार के होते हैं, पर्याप्त पर्याप्त, मिला ना। वनस्पति का एक जीव दो प्रकार के होते हैं, पर्याप्त का पर्याप्त। त्रस का एक जीव दो प्रकार के होते हैं, पर्याप्त का पर्याप्त। जिसको हम 6 कायिक कहते हैं उनके पर्याप्त और अपर्याप्त 12 हो गए। इस प्रकार 12 जीव समास होते हैं, मिला। हाँ, 6 कायिक जीवों की अपेक्षा 6 निवृत्ति पर्याप्तक जीव समास, 6 निवृत्ति अपर्याप्त जीव समास और 6 लब्धि पर्याप्त जीव समास, इस प्रकार 18 जीव समास होते हैं। एकेंद्रिय जीव दो प्रकार के होते हैं, बादर और सूक्ष्म। बादर दो प्रकार के होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। सूक्ष्म दो प्रकार के होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। द्विंद्रिय जीव दो प्रकार, अभी देखो त्रस में द्विंद्रिय, तीनद्रिय, चतुर्द्रिय, पंचेंद्रिय भेद किए। एकेंद्रिय में उन्होंने 4 ले लिए पर्याप्त पर्याप्त वाले, यानी मूल में उन्होंने बादर और सूक्ष्म एकेंद्रिय के भेद किए और दोनों के दो दो कर दिए। अब त्रसों में वो द्विंद्रिय, तीनद्रिय, चतुर्द्रिय, पंचेंद्रिय अलग करेंगे। तो द्विंद्रिय जीव दो प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक अपर्याप्तक। तीनद्रिय दो प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक अपर्याप्तक। चतुरिंद्रिय दो प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक अपर्याप्तक। पंचेंद्रिय जीव दो प्रकार के होते हैं, संगिक और असंगिक। और संगिक जीव दो प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। असंगिक जीव दो प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। इस प्रकार 14 जीव समास होते जो हमेशा 14 हम गिनते हैं। हाँ, और ये जो है बादर एक इंद्रिय, सूक्ष्म एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, ये 7 प्रकार के जीव हुए। साधुनी 14 तो हमने बता दिए ऊपर। अब इनके 7 निवृत्ति पर्याप्त जीव समास, 7 निवृत्ति अपर्याप्त जीव समास और 7 लभ्य पर्याप्त जीव समास, ये सब मिलकर 21 जीव समास होते हैं। ये दोनों ही पर्याप्त नाम कर्म के हैं, परंतु जब तक पहली शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुआ दूसरी, तो उसको निवृत्ति अपर्याप्त कहेंगे, बाद में उसी को निवृत्ति पर्याप्त कहेंगे। बात उनको निवृत्ति पर्याप्त नहीं, नहीं पूरी लाइफ टाइम तक वो उसको पर्याप्त पर्याप्त जीव ही कहेंगे। पर्याप्त जीवों के दो भेद किए, जब तक पर्याप्त, हाँ दूसरी पर्याप्ति तक और बाद में, तो 21 हो गए। आगे पढ़ने के पहले हमने देखा था, देखो क्या, पहले तो एक ही भेद लिया, इन्हें एक उसको 2 गुना 3 गुना ऐसा किया। एक में क्या लिया, तो सबका एक ले लिया, सबके पर्याप्त और अपर्याप्त दो भेद लिए, और सबके निवृत्ति पर्याप्त, निवृत्ति अपर्याप्त लगे। यानी अभी हमको ये आगे की बात हम गिनेंगे नहीं, एक किस अपेक्षा से, दो किस अपेक्षा से, तीन, हम 7 तक आए, सात्विक 21 तक आए थे, 7 दुनी 14 और सात्विक 21, तो हमको अभी गिनना है। पहले हमने एक ही सबको लिया कायिक वाले, जब मूल में दो भेद किए त्रस और स्थावर, मूल में 3 भेद किए, 3 दुनी 6 और 3 3 9 कर दिए थे, नहीं एक इंद्रिय के बादर सूक्ष्म और त्रस को अलग रखो ऐसा लिखा था, या एक इंद्रिय को एक का सिंगल रखो और त्रस में सकल इंद्रिय विकल इंद्रिय को, एक ही बात है। तो मूल में 6 भेद करके उसके 3 भेद करके उसके 6 और 9 कर दिए थे, मूल में 4 भेद करना भी, मूल में 4 भेद कैसे किए, स्थावरों के बादर सूक्ष्म यानी एक इंद्रियों के और यहाँ सकल इंद्रिय विकल इंद्रिय, ये मूल में 4 भेद, ये 4 दुनिया 8 4 3 12, मूल में 5 भेद किए, वो 6 हो जाएगी, मूल में 5 भेद किए थे हमने, देखो यहाँ तो एक इंद्रिय के बाद सूक्ष्म, फिर विकल इंद्रिय को अलग निकाला और ये संगी असंगी को अलग निकाला, 5 भेद हुए। देखो देखो जो 10 जीव समास होते हैं ना,
एक इंद्रिय के पर्याप्त
एक इंद्रिय में तो 2 भेद किए उन्होंने, पर्याप्त सॉरी सूक्ष्म और बादर, और त्रस में 2 भेद किए, पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय ऐसे 2 भेद किए थे ना उसमें, और पंचेंद्रिय में संगी असंगी किए थे, बराबर है, ये 5 भेद हुए। हाँ वही तो मैं उसी को बता रही हूँ, देखो वहाँ लिखा है लास्ट लाइन 594 की लास्ट लाइन, बादर स्थावर सूक्ष्म स्थावर संगी पंचेंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय विकलेंद्रिय, मैं तो यही बात अभी बताई थी आपको, ये मूल में 5 भेद हुए, फिर उसके 10 करो या 15 करो, यहाँ तक बात क्या है। अब हमने 6 भेद देखे थे, 6 भेद में त्रय जो हम षटकायिक कहते हैं वो तो आसान है, 6 काय वाले 5 स्थावर अलग अलग गिनो और एक त्रस्काय, फिर उसके पर्याप्त पर्याप्त करो तो 10 हो जाएंगे, सॉरी 12 हो जाएंगे, और उसको निवृत्ति पर्याप्त, निवृत्ति अपर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त, सैत्रिक 18 हो जाएगी। अब 7 भेद किए थे हमने, अभी जो हमने देखा था 7 भेद, यानी जो 14 जीव समाज संकेत है, एकेंद्रीय के सूक्ष्म बादल और पंचेंद्रीय के संगे असंगे, मूल में 7 भेद हुए। अभी 7 × 14 कहो, 7 × 21 कहो, समझ में आई? मात्र पर्याप्त अपर्याप्त भेद करेंगे 7 के तो 14 हो गए, और निवृत्ति पर्याप्त, निवृत्ति अपर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त तो 21 हो जाएंगे।
ट्रिपल में आएंगे तब निवृत्ति
अपर्याप्त, हाँ तब लेंगे। हाँ, यानी अभी हमने पहले में 1 पूरा को लिया, उसके 2 और 3 लिया, यानी 2 गुना करना और 3 गुना करना, अपेक्षा तो हमको मालूम है। 2 भेद किए, 3 भेद किए, 4 भेद किए, 5 भेद, 6, 7 तक हम आए, यहाँ तक पढ़ा हमने, अभी आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक बात ख्याल में है ना? हमने 19 तक गए थे ना हम, इसलिए 7 में रुक कर जरा रिवीजन किया। हाँ हाँ हाँ, अभी देखो, यानी 21 जीव समाज तक हमने पढ़ा, 595 पेज पर नीचे से दूसरी लाइन। अब देखो, पृथ्वी का एक जीव 2 प्रकार के, अभी हमें मूल में 7 भेद किए थे जो रेगुलर जीव समाज के थे, अभी हमको 8 भेद करना। तो पृथ्वी का एक जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्त अपर्याप्त। अब का एक जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। तेजस का एक जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्त अपर्याप्त। वायु का एक जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्त अपर्याप्त। देखो भी, वनस्पति का एक में केवल पर्याप्त अपर्याप्त नहीं कहा, वनस्पति का एक जीव 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्येक शरीर और साधारण शरीर। और प्रत्येक शरीर 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्त अपर्याप्त। साधारण शरीर 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्त अपर्याप्त। त्रस का एक जीव 2 प्रकार के होते हैं, सकलेंद्रीय और विकलेंद्रीय। इसमें एक भेद और बढ़ा दिया, अकेला त्रस का नहीं रखा, सकलेंद्रीय विकलेंद्रीय। सकलेंद्रीय जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्त अपर्याप्त। विकलेंद्रीय जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्त अपर्याप्त। इस प्रकार 16 जीव समास होते हैं। यानी मूल में उन्होंने 8 भेद किए, ये गिनाए। देखो, पृथ्वी का एक, अप का एक, तेजस का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, 2 भेद किए, प्रत्येक वनस्पति का एक, साधारण वनस्पति का एक, यानी एकेंद्रियों के 6 भेद किए और त्रसों के 2 भेद किए, सकलेंद्रीय और विकलेंद्रीय। यहाँ तक ख्याल में आई बात? तो मूल में 8 किए, 8 × 2 = 16 कहो, 8 × 3 = 24 कहो। तो ये 8 जो हमने नाम गिनाए हैं, तो इनकी अपेक्षा 8 निवृत्ति पर्याप्त जीव समास, 8 निवृत्ति अपर्याप्त जीव समास, और 8 अपर्याप्त के नहीं लब्धि अपर्याप्त जीव समासों में 8 लब्धि अपर्याप्त जीव समास होते हैं। इस प्रकार सब मिलकर 24 जीव समास होते हैं। ये ख्याल में आई बात? यानी हम 8 भेद किए थे, 5 स्थावर के बदले वनस्पति के 2 भेद कर दिए, यानी वो स्थावर में 6 हो गए और त्रसों में 2 किए, सकलेंद्रीय विकलेंद्रीय। मूल में 8 भेद करके फिर उसके 2 या 3 भेद कर दिए। अभी हमको 9 गिनाएंगे, वो 24 जीव समास होते। अब पृथ्वी का एक 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। जल का एक जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। अग्नि का एक जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। वायु का एक जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। वनस्पति का एक जीव 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्येक शरीर और साधारण शरीर। अब प्रत्येक शरीर जीव 2 प्रकार के होते हैं, बादर निगोद प्रतिष्ठित और बादर निगोद अप्रतिष्ठित, जिसको हम प्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं और अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं, उसके 2 भेद कर दिए उन्होंने। बादर निगोद प्रतिष्ठित जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। बादर निगोदी प्रतिष्ठित से भिन्न, अर्थात बादर निगोद अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। साधारण जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। त्रस का जीव 2 प्रकार के होते हैं, विकलेंद्रीय और सकलेंद्रीय। सकलेंद्रीय जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। विकलेंद्रीय जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। इस प्रकार ये 18 जीव समास होते हैं, यानी मूल में 9 कर दिए उन्होंने। पहले कैसे किए थे? वनस्पति के दो करके उन्होंने स्थावर में छह किए थे और त्रस में दो किए, यहाँ त्रस में तो दो ही किए और स्थावर में कितने कर दिए, मूल में नौ बनाने हैं तो सात कर दिए, सात में पृथ्वी के पृथ्वी अब यानी पृथ्वी का एक जल का एक वायु का एक अग्नि का एक वनस्पति का एक में क्या किया, प्रत्येक यानी प्रतिष्ठित प्रत्येक और प्रतिष्ठित प्रत्येक और फिर साधारण, ये मूल में सात भेद किए, फिर से पृथ्वी का एक जल का एक अग्नि का एक वायु का एक प्रतिष्ठित प्रत्येक अप्रतिष्ठित प्रत्येक और साधारण, ये तो एक इंद्रियों के हुए और सकलेंद्रीय विकलेंद्रीय, ये नौ भेद मूल में हुए। अब उसके 18 करो या 9 + 27 करो, है ना, देखो अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पर सेकंड लाइन 597 उन्होंने वो हर एक के पर्याप्त अपर्याप्त गिने तो मूल में नौ कौन से गए, हमारा छूट गया, अभी इसको गिन रहे यहाँ पर, पृथ्वी कायिक जल कायिक अग्नि कायिक वायु कायिक सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिक अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिक साधारण वनस्पति कायिक, ये सारे तो सावर के हुए, सकलेंद्रीय और विकलेंद्रीय, इन नौ प्रकार के जीवों की अपेक्षा नौ निवृत्ति पर्याप्त जीव समास, नौ निवृत्ति अपर्याप्त जीव समास और नौ लब्धि अपर्याप्त जीव समास, ये सब मिलाकर 27 जीव समास होते हैं। ख्याल में नहीं तो हम एक एक उसमें भेद बढ़ा रहे हैं, अभी 9 भेद किया, अभी 10 भेद करेंगे, ये 10 के 20 कहेंगे या 30 कहेंगे, है ना। पूर्व में कहे गए 18 जीव समासों में से साधारण वनस्पति कायिक जीवों के पर्याप्त और अपर्याप्त ये दो जीव समास निकाल कर, साधारण वनस्पति कायिक जीव दो प्रकार के होते हैं, नित्य निगोद और चतुर्गति निगोद। नित्य निगोद दो प्रकार के होते हैं, ये नित्य निगोद समझते, साधारण का ही अर्थ है निगोद, निगोद में नित्य निगोद किसको कहना है, और बगैर अभी तक आए ही नहीं, जिनकी निगोद पर्याय ही चल रही है अनादि से अभी तक, वो नित्य निगोद, उसी में से आते रहते बाहर, बाहर यानी उसको कहेंगे व्यवहार राशि में आते, व्यवहार राशि यानी उसमें से 608 जीव मोक्ष जाले जाते हैं और नित्य निगोद से 608 जीव हर 6 महीने 8 समय में व्यवहार राशि में आते, उसको व्यवहार राशि कहेंगे, और उसकी तो क्योंकि वो तो बैलेंस रहता है ना, इतने मोक्ष गए उतने बाहर निकले उसमें से, और जो एक बार बाहर निकले ने अन्य पर्याय को पाए, यानी हो सकता है वायु कायिक हुए अग्नि कायिक हुए, कोई असंगी हुआ, कोई तीरंज पंचेनी हुआ, कोई मनुष्य भी हुआ, अब फिर बाद में फिर निगोद में गए तो उसको क्या कहेंगे, चतुर्गति निगोद, अभी वो व्यवहार राशि का जीव है, वो नित्य निगोद वाला नहीं है, वो ये व्यवहार राशि में आ गया है, व्यवहार राशि में भी निगोद राशि है भरपूर, उसको इतर निगोद कहेंगे, नित्य निगोद से एक बार बाहर आ गया और फिर वापस वो निगोद में गया, नित्य निगोद में गया ऐसा तो नहीं कहेंगे क्योंकि बीच में अन्य पर्याय पाई उसने, अभी उसको कहेंगे इतर निगोद, निगोद निगोद में कोई डिफरेंस नहीं है, वो अभी तक निकला नहीं था इसलिए उसको नित्य निगोद कहेंगे, एक बार निकल कर वापस निगोद में जाता है तो उसको इतर निगोद कहेंगे।
यहाँ पर जो बात आ जा रही है 6 महीने और 8 समय में 608 जीव मोक्ष चले जाते हैं,
हाँ,
तो उसमें नित्य निगोद का जीव उसी बहु में मनुष्य पर्याय लेकर मोक्ष में जाएगा तो उसको भी 608 में गिनेंगे नहीं,
गिनेंगे ना क्योंकि वो निकला है ना नित्य निगोद से,
नित्य निगोद से डायरेक्ट कोई नहीं जाता है ना,
डायरेक्ट बादर में से सूक्ष्म में से नहीं जाता, नित्य से निकला ऐसा भी हम कहेंगे, मनुष्य हुआ है प्रथम ऑप्शन प्राप्त किया, हमने देखा तो वो नियम से मिथ्यात्व में आया, आने दो फिर अंतर्मुहूर्त में फिर समय से प्राप्त करेगा और फिर वो आगे जो यथाक्रम उसका संयम धारण करके मोक्ष चला जाए, हो सकता है बादर निगोद से आना चाहिए, सूक्ष्म से निकला हुआ जीव मोक्ष नहीं जा सकता, संयम तक प्राप्त
दोनों है, हाँ
सूक्ष्म और बादर, ये यहाँ भेद नहीं किया अभी, वो करेंगे शायद आगे,
एक बार निकल वापस निगोद में गया तो
उसको इतर निगोद कहेंगे।
फिर वापस आ सकते हैं ना वो जीव?
अरे वो वहीं पर है, व्यवहार राशि में ही है, अभी उसका चलेगा। क्योंकि एक जीव इतर निगोद में अधिक से अधिक कितने काल तक रहता है? असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, असंख्यात लोग भी असंख्यात काल है, और असंख्यात पुद्गल परिवर्तन अनंत अनंत काल है। असंख्यात पुद्गल परिवर्तन वो एकेंद्रीय की अपेक्षा है। इतर निगोद की हमें मैंने पूछा लक्ष्मी, इतर निगोद का पूछा, एकेंद्रीय का नहीं पूछा। असंख्यात पुद्गल परिवर्तन एकेंद्रीय में रहने का काल है, निगोद में रहने का कितना काल है? ढाई पुद्गल परिवर्तन, ढाई पुद्गल परिवर्तन। एक जीव गया है इतर निगोद, है ना, वो निगोद में गया, निगोद में गया कर तो निगोद में नहीं था, निगोद में गया है, नेचुरली वो इतर निगोद ही है। क्योंकि नित्य निगोद में कौन क्या जाएगा, वो तो नित्य में ही है ना, वो उसी में है। उसका तो अनादि से कितने अनंत बार तो उसने भाव परावर्तन किया, हमारे हुए तो उसके भी कहेंगे ना भाव परावर्तन हो गए उसके। एकेंद्रिय का, एकेंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल है, और निगोद में रहने का उत्कृष्ट काल है वो ढाई पुद्गल परावर्तन। कोई एक जीव उसमें, वही तो एक जीव की अपेक्षा ढाई पुद्गल परावर्तन।
इस पर से क्या निष्कर्ष लेना कि कोई जीव एकेंद्रीय में चला जाएगा तो मनुष्य पर्याय मिलने में असंख्यात काल लगेगा?
मनुष्य क्या, तो उसका त्रस्त होने में इतना आनंद काल चला
जाएगा। हमें तो अभी मनुष्य पर्याय मिली है ना, उसका कोई वैल्यू नहीं है।
नहीं, ऐसा भी हो सकता है त्रस्त पर्याय मिली और उसमें एक भी मनुष्य भव न हो, ये हो सकता है, फिर अनंत काल एकेंद्रीय में गया।
नहीं, यहाँ तो हमें मनुष्य पर्याय की जो दुर्लभता है उसको हम कंसिडर ही नहीं करते, ऐसा मेरा कहना है।
फिर भी अनंत तो बार की इस जीव ने, यानी वो अनादि क्या होता है उसकी पहचान ही नहीं उसको, यानी अनंत अनंत काल के बाद उसको एक भव मिले, ऐसे भी अनंत भव उसने कर दिए है मनुष्यों को। अभी लगता है अभी मनु इतने काल के बाद हुआ तो भोग भोगना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि वापस वहां जाना है, उसकी तैयारी करना पड़ेगी इसको। फिर नहीं मिले कितने काल तक तो क्या होगा, भोग भोग लेना। क्या करें, ये कोई परद्रव्य को छू नहीं सकता, भोग क्या भोगेगा, परंतु ये अपनी मान्यता में उससे मैं सुखी होऊंगा ऐसा मान के रखा है। अरे परद्रव्य के साथ कोई संबंध नहीं, जीव का कोई संबंध नहीं, ये भ्रम पैदा कर दिया सारा, और ये भ्रम ही भ्रम में रहता है, और भ्रम में रहने का कारण नया नया शरीर मिलता रहता है, और उसमें भी रोज नई साड़ी चाहिए, रोज नए फैशन चाहिए, तो नया नया शरीर भी मिलता रहता है, कभी एक इंद्रिय कभी दो इंद्रिय कभी पर्याप्त कभी अपर्याप्त, कितनी वैरायटी है ना। ये सब हमारी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या घूम के आए, एक दो बार नहीं अनंतों बार। तो ये देखो क्यों पढ़ना, क्यों पढ़ना, अरे सोचे तो सही कि ये कहाँ कहाँ फिर भटकना पड़ेगा, भय लगता है तो अच्छा है, थोड़ा विचार तो करेगा, और कहीं दूर से कहीं लाना नहीं है, जो है उसको सोचना है, उसको स्वीकार करना है।
इधर सुनते तो भय,
हाँ इधर सुनते तो बाकी निर्भय होकर सही है। देखो अभी हम देख रहे हैं, हमने 18 तो देखो ना, 9 दिन 18 9 3 27 देखे थे, अभी उसी में उन्होंने निगोद के दो भेद कर दिए नित। हाँ 18 तो हमने भेद कर ही दिए थे, कौन से किए थे, पृथ्वी जल अग्नि वायु प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठित, और साधारण एक ही कहा था, वो साधारण के दो भेद करने, नित्य निगोदक इतर निगोदक, एक एक्स्ट्रा बढ़ गया ना। तो देखो दो लाइन नीचे, नित्य निगोद दो प्रकार के होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। चतुर्गति निगोद दो प्रकार के होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। ये चार जीव समास मिलने पर 20 जीव समास होते हैं। पहले हमने मूल में 9 भेद किए थे, उसके 18 और 27 किए थे, अब ये मूल में कितने हुए? 10 हुए, मूल में 10, उसके पर्याप्त अपर्याप्त 20 हुए, और फिर निवृत्ति पर्याप्त, निवृत्ति अपर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त, ये 30 हो गए। अभी उसको फिर बताएंगे कौन से 10, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, स्वप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिक, अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिक, नित्य निगोध, चतुर्गति निगोध, विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय, इन 10 प्रकार के जीवों की अपेक्षा 10 निवृत्ति पर्याप्त जीव समास, 10 निवृत्ति अपर्याप्त जीव समास और 10 लब्धि अपर्याप्त जीव समास, ये सब मिलाकर 30 जीव समास होते हैं। अभी मूल में 10 भेद किए थे, अभी 11 11 करेंगे और 11 के 22 और 11 तीस 33 ऐसे भेद करेंगे। देखो, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, ये पांचों काय के जीव दो दो प्रकार के होते हैं, बादर और सूक्ष्म। यानी मूल में 5 के 2 गुना किए, ये 10 भेद तो यहीं पर बताए। ये सभी बादर और सभी सूक्ष्म जीव पर्याप्त और अपर्याप्त तो होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक एक के काय के सभी बादर और सभी सूक्ष्म जीव दो दो प्रकार के हो जाते हैं। त्रस्कायिक जीव दो प्रकार के होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। इस प्रकार ये सब मिलाकर 22 जीव समास हो जाते हैं। उन्होंने क्या किया, स्थावर के 5 है ना, 5 × 2 = 10 उन्हें उधर ही कर दिए उन्होंने, बादर और सूक्ष्म 10 हो गए, त्रस्कायिक ही रखा तो 11 हो गए। अब ये 11 के पर्याप्त अपर्याप्त 22 हो गए और उन्हीं के निवृत्ति पर्याप्त, निवृत्ति अपर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त 11 × 33 हो गए। देखो, ये इसी को फिर गिना रहे, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक के बादर और सूक्ष्म के भेद से 10 भेद होते। ये वनस्पति कायिक के इतने भेद किए थे हमने, 3 3 4 4, वो अभी मिटा दिए, दूसरी पद्धति से कर रहे। और त्रस्कायिक, इन 11 प्रकार के जीवों की अपेक्षा 11 निवृत्ति पर्याप्त जीव समास, 11 निवृत्ति अपर्याप्त जीव समास और 11 लब्धि अपर्याप्त जीव समास, इस प्रकार सब मिलाकर 33 जीव समास होते हैं। 11 तक आए ना हमने, पहले में 7 तक तो आए थे जो रेगुलर जीव समास थे, हमारे 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21। फिर 8 में क्या किया,
प्रत्येक और साधारण,
हाँ प्रत्येक और साधारण किया। फिर 9 में क्या किया, प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठित। 10 में साधारण के भी 2 नित्य हैं। 11 में 5 के सूक्ष्म और बादल और एक त्रस का ही, 11 × 22 = 33, यहाँ तक आए ना। अभी आगे, पूर्वोक्त 22 जीव समासों में से 11 × 22 हुए थे ना, यानी मूल में 11 भेद किए थे उसके 22, उसमें से त्रस्कायिक जीवों के पर्याप्त और अपर्याप्त ये 2 जीव समास निकाल कर, त्रस्कायिक जीव 2 प्रकार के होते हैं, समनस्क और अमनस्क, यानी संगी और असंगी। देखो, असंगी में कौन कौन आए, हाँ त्रसों में असंगी इतना ही भेद किया, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय। समनस जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्त अपर्याप्त। अमनस जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्त अपर्याप्त। ये 4 जीव समास मिलाने पर 24 जीव समास होते, यानी मूल में उन्होंने 12 भेद किए थे, 12 × 24 = 36 करेंगे। पहले 11 कैसे किए थे, 5 स्थावर का एक के बादर सूक्ष्म किए थे, 10 हुए और एक त्रस लिया था, ये 11 थे। अब यहाँ 12 करना है, तो 12 करने में उन्होंने क्या किया, वो तो 10 लिखे और त्रस के 2 भेद किए, संगी और असंगी, यानी वो 10 और ये 2 12, और ये 12 के पर्याप्त अपर्याप्त 24 हो गए और 3 गुना करेंगे 36 हो जाएंगे। अभी उसी को गिनेंगे, ये 24 तो गिने, अभी जो हमने अभी 12 गिने थे ना उसको बता रहे। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, जीवों के बादर और सूक्ष्म के भेद से 10 भेद। अब त्रसों के कैसे किए, समनस्क त्रस्कायिक तथा अमनस्क त्रस्कायिक, इन 12 प्रकार के जीवों की अपेक्षा 12 निवृत्ति पर्याप्त जीव समास, 12 निवृत्ति अपर्याप्त जीव समास और 12 लब्धि अपर्याप्त जीव समास, ये सब मिलाकर 36 जीव समास होते हैं। समझ में आ रहे हैं ना बात कैसे हो रहे हैं। बस एक एक अपेक्षा से उसके और एक भेद करते जाओ, तो दो गुना करो, तीन गुना करो। पूर्वोक्त 24 जीव समासों में से अमनस्क जीवों के पर्याप्त और अपर्याप्त ये दो जीव समास निकाल कर, अमनस्क जीव दो प्रकार के होते हैं, सकलेंद्रिय और विकलेंद्रिय। देखो अभी क्या किया उन्होंने, 12 के बदले 13 भेद करने, 5 सावर का 21, सूक्ष्म बादर के 10 तो हो गए, 5 गुनी 10, त्रस में संगी, असंगी पंचेंद्रिय और विकलेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और विकलेंद्रिय, यानी त्रस के 3 और वो 10, मूल में 13 भेद करेंगे, ये बता रहे हैं। तो इन्होंने पहले में पहले त्रस के क्या किया, सकलेंद्रिय और विकलेंद्रिय, और सकलेंद्रिय के दो भेद, पर्याप्त अपर्याप्त, विकलेंद्रिय के दो भेद, पर्याप्त और अपर्याप्त। इन चार जीव समासों को मिला देने पर 26 जीव समास होते हैं, 13 गुनी 26। अब ये फिर गिना रहे 13 कौन से, पांचों स्थावर कायिक जीवों के बादर और सूक्ष्म के भेद से 10 भेद, विकलेंद्रिय, अमनस्क पंचेंद्रिय और समनस्क पंचेंद्रिय, यानी त्रसों के 3 भेद करके वो 10 में मिला दे, 13 हो गए। इन 13 प्रकार के जीवों की अपेक्षा 13 निवृत्ति पर्याप्त जीव समास, 13 निवृत्ति अपर्याप्त जीव समास, 13 लब्धि अपर्याप्त जीव समास, इस प्रकार ये सब मिलाकर 39 जीव समास होते हैं। 13 का 2 गुना करे तो 26 हुए, और 13 को 3 गुना करे तो 39 हो गए, 33 39। अब ये 13 के भेद किए थे ना, अभी 14 भेद करके उसके 28 और करेंगे, और 14 28 14 42, 26 जीव समासों में से 26 किए थे ना, उसमें से वनस्पति का एक जीवों के 4 जीव समास निकाल कर, कौन से 4 होते, बादर सूक्ष्म के पर्याप्त पर्याप्त, इतना ही भेद किया था। उसके बदले वनस्पति का एक जीव दो प्रकार के होते हैं, प्रत्येक शरीर और साधारण शरीर, प्रत्येक शरीर वनस्पति का एक जीव दो प्रकार के होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। साधारण शरीर वनस्पति का एक जीव दो प्रकार के होते हैं, बादर और सूक्ष्म, ये दोनों प्रकार के जीव भी दो दो प्रकार के होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। ये 6 जीव समास मिला देने पर 28 जीव समास होते हैं। देखो क्या किया उन्होंने, वनस्पति काय के बादर सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त ऐसे 4 भेद किए थे, उसके बदले अभी उसके 6 भेद करेंगे। हाँ, प्रत्येक साधारण और साधारण में बादर और सूक्ष्म, प्रत्येक में भी बादर सूक्ष्म होते होंगे, वो बादर ही होता है। हाँ, यानी उसके मूल में वनस्पति काय के 3 भेद किए, प्रत्येक शरीर, बादर निगोत और सूक्ष्म निगोत, फिर उसके पर्याप्त पर्याप्त, यानी प्रत्येक और साधारण मूल के, साधारण के 2, यानी वनस्पति के 3 भेद कैसे हुए, प्रत्येक शरीर, प्रत्येक शरीर वाले बादर साधारण, यानी बादर निगोत और सूक्ष्म निगोत, साधारण को या निगोत को, फिर उसके पर्याप्त पर्याप्त, यानी केवल बादर और सूक्ष्म भेद किए थे वनस्पति के, और उसके पर्याप्त पर्याप्त किए, उसके बदले बादर सूक्ष्म को हटा दो, मूल में प्रत्येक और साधारण भेद किए, और साधारण के 2 भेद किए, हाँ सूक्ष्म बादर, और सबके 3 के पर्याप्त पर्याप्त। तो ये 28 जीव समास होते हैं। अभी ये 14 को मूल में गिनाएंगे, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, साधारण वनस्पति का एक जीवों के बादर और सूक्ष्म के भेद से 10 भेद, और प्रत्येक वनस्पति का एक, यानी स्थावरों के 11 भेद हो गए, बराबर ना, विकलेंद्रिय, समनस्क पंचेंद्रिय और अमनस्क पंचेंद्रिय, इन 14 प्रकार के जीवों की अपेक्षा 14 निवृत्ति पर्याप्त जीव समास, 14 निवृत्ति अपर्याप्त जीव समास और 14 लब्धि अपर्याप्त जीव समास, इस प्रकार ये सब मिलाकर 42 जीव समास होते हैं। देखो ये 5 स्थावर कायिक में से उन्होंने 11 भेद किए, 5 के बादर और सूक्ष्म, वनस्पति के प्रत्येक वनस्पति का एक, साधारण में बादर साधारण, बादर निगोत और सूक्ष्म निगोत, उसके पर्याप्त पर्याप्त मूल में उसके 11 भेद करके उसके सबके पर्याप्त पर्याप्त किए थे। हाँ बादर निबोध है वो किसी के आधार से ही रहते हैं। और जिन प्रत्येक शरीर के आधार से रहते हैं उसको क्या कहेंगे? हाँ प्रतिष्ठित या सप्रतिष्ठित। ये 42 जीव समास होते यहाँ तक हमने पढ़ा। पूर्वोक्त 28 जीव समासों में से ये हो गया कि नहीं हुआ? अभी जो पढ़े हुए बराबर है ना? हाँ पूर्वोक्त 28 जीव समासों में से प्रत्येक वनस्पति का एक जीवों के पर्याप्त और अपर्याप्त ये दो जीव समास निकाल कर प्रत्येक शरीर जीव दो प्रकार के होते हैं। बादर निगोद योनिक योनिक यानी जिसमें बादर निगोद की वो योनि है नहीं उसमें बादर निगोद उत्पन्न होते हैं जिसको हम सप्रतिष्ठित कहते हैं। इसको बादर निगोद योनिक और बादर निगोद अयोनिक अप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित वो स योनिक वाले अयोनिक यानी अप्रतिष्ठित। मैंने एक एक को निकाला एक भेद बढ़ा दिया। वे भी सब दो दो प्रकार के होते हैं पर्याप्त और अपर्याप्त। इस प्रकार ये चार भंग मिला देने पर 30 जीव समास होते हैं। अब वो पहले हमने 14 भेद किए थे एक इंद्रिय के 11 और त्रसों के 3 किए थे। अभी एक इंद्रियों के 12 और ये 3 15 किए वो 15 गिनाएंगे। पृथ्वी का एक जल का एक अग्नि का एक वायु का एक साधारण शरीर इनके बादर और सूक्ष्म के भेद से 10 भेद तथा सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति विकलेंद्रिय अमनस पंचेंद्रिय और समनस पंचेंद्रिय इस प्रकार इन 15 प्रकार के जीवों की अपेक्षा 15 निवृत्ति पर्याप्त जीव समास 15 निवृत्ति अपर्याप्त जीव समास और 15 लब्धि पर्याप्त जीव समास इस प्रकार ये सब मिलाकर 45 जीव समास होते हैं। मूल में हमने कितने भेद किए? 15 15 के 30 या 15 के 45। 15 कैसे किए? विकलेंद्रिय के तो 3 ही बना दिए और एक इंद्रियों के 12 किए। 12 कौन से किए? पृथ्वी जल वगैरह और साधारण वनस्पति इनको मिलकर बादर सूक्ष्म 10 तो ये हो गए। और फिर प्रत्येक वनस्पति के ये तो 10 हो गए। हमको अभी और दो करना है प्रत्येक के सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित यानी मिलकर 12 हो गए है ना। और ये 3 15 हो गए भेद और इनके 10 कर 15 दूनी 30 करो 15 तीक 45 करो। ख्याल में आई बात ना? ये 45 हो गए क्या? समय हो गया। अच्छा अभी आगे बहुत बड़ा है 19 तक बढ़ाना है। हमने 15 तक देखा 15 दिन 30 15 तक 45 कल यहाँ से लेंगे आगे। जावन से ज्ञान से तुझे लो खा लो सोवाणी मस्तक
नमो 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 नमो